الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه والعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق رسوله النبي الكريم عليه أما بعد میرے محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے ایک ابھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عقل مند کون انسان ہے، کون سا شخص ہے جس کو عقل مند کہا جائے؟ عام طور سے دنیا میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو مختلف طور طریقوں سے دنیاوی مفادات حاصل کر لے، بڑی شاندار طریقے سے تجارت کرے، پیسے کمائے، یا لوگوں پر اقتدار حاصل کرے، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے اور بڑے اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے اپنی تدبیروں سے، اپنی کوششوں سے اعلیٰ منصب تک پہنچ جائے، اس کو کہا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف یہ فرمائی کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پائے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے یہ دنیا میں کام کرے۔ وہ ہے عقل مند، اور عاجز، آپ نے فرمایا عاجز وہ ہے، یعنی جو اپنی ساری کوششیں اس کی بیکار گئیں، ایسا عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے، یعنی جو کچھ دل میں آئے وہ کرے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، तो अपने आप को ख्वाहिशात के पीछे लगाए रखे और तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से तमन्नाएं कायम करे कि मुझे अल्लाह मियां बख्श देगा, मुझे जन्नत मिल जाएगी। तो पहला जुमला जो इरशाद फरमाया वो हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अकलमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मरने के बाद की जिंदगी के लिए काम करे दुनिया में। वजह उसकी ये है कि ये दुनिया जिसमें हम लोग आज जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर इस पर गौर करो तो ये गौर खुद आपको इस नतीजे तक पहुंचाएगा कि ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। क्योंकि सदियों से ये मामला होता चला आ रहा है कि बच्चा पैदा होता है, बचपन से गुजरता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर आखिर दुनिया से चला जाता है। बल्कि बहुत से ऐसे हैं जो बचपन ही में चले जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जवानी में चले जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अधेड़ उम्र में चले जाते हैं, बुढ़ापे का भी इंतजार नहीं होता। यानी मौत हर हालत में आनी है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसको दुनिया का कोई भी इंसान झुटला नहीं सकता, वो चाहे दहरिया हो चाहे खुदा को भी ना मानता हो मगर मौत को मानता है कि एक दिन मौत आनी है। और इस बात को भी मानता है कि मौत का कोई वक्त पहले से बताया नहीं जा सकता, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है ना दुनिया की कोई साइंस ऐसी है जो इंसान को यह बता दे कि तुम्हारी मौत कब आने वाली है। सेहत बज़ाहिर सेहतमंद आदमी नजर आता है, अचानक दिल का दौरा पड़ा खत्म हो गया, बज़ाहिर सेहतमंद आदमी नजर आता है और अचानक उसके दिमाग की रग फट गई खत्म हो गया, या और कोई अचानक ना कहानी हालत पेश आ गई, कोई हादसा पेश आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पता नहीं है कि मैं जब उठ के यहां से जाऊंगा अपने घर और रास्ते में सड़क से गुजरूंगा तो मेरे साथ कोई हादसा पेश नहीं आएगा, कोई गारंटी है, कोई जमानत है किसी के पास? लिहाजा अगले पल का भी पता नहीं है क्या मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगर ये जिंदगी जो दुनिया की जिंदगी है ये मकसूद असली होती या और ये हमारी मंजिल होती तो फिर ये मौत क्यों आती और मौत को इतना गैर मुअय्यन कैसे होती कि पता नहीं कब आ जाए। तो यकीनन इससे मालूम होता है कि ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मामला बस इसी दुनिया के ऊपर खत्म हो जाए, बल्कि मरने के बाद एक और जिंदगी आने वाली है जो दुनिया के हालात से मुख्तलिफ होगी, जो आरजी नहीं होगी, अबदी होगी, दायमी होगी, हमेशा के लिए होगी। और उसके बारे में अल्लाह तबारक उतारा ने अपने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के जरिए यह बता रखा है कि देखो वहां पर तुम्हें दो में से कोई एक हालत पेश आ सकती है, एक ये कि वहां पर तुम्हारा इम्तिहान होगा, हिसाब होगा और उस इम्तिहान के अंदर अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारे लिए दायमी अबदी नेमतें हैं जन्नत की। ऐसी नेमतें हैं जिसका तुमने दुनिया में कभी तसव्वुर भी नहीं किया। वो नेमतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अअदतुल इबादी अस्सालिहीन माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला कल्बी बशर। मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि न आज तक किसी आंख ने उन्हें देखी, न किसी कान ने उनका तज़किरा सुना और न किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल कभी गुजरा। ऐसी नेमतें वो हमने तैयार कर रखी हैं तुम्हारे लिए, उस अगर तुम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। लेकिन अगर तुमने दुनियावी जिंदगी इस तरह गुजारी कि उसके नतीजे में तुम उस इम्तिहान में कामयाब न हो सके तो अल्लाह बचाए फिर अजाब भी बड़ा सख्त है। जहन्नम ऐसी चीज है कि इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। वो तमाम तर तकलीफों का, मशक्कतों का, गमों का, दुखों का मरकज है जहन्नम। जन्नत में किसी गम का नामो निशान नहीं, किसी तकलीफ का नामो निशान नहीं, किसी खौफ का नामो निशान नहीं, और अल्लाह बताए जहन्नम में किसी खुशी का नामो निशान नहीं, किसी आराम का नामो निशान नहीं। तकलीफें ही तकलीफें, अजाब ही अजाब, आग ही आग। इतना जबरदस्त इम्तिहान होने वाला है तुम्हारा मरने के बाद, और उसका पर्चा भी आउट कर दिया गया। क्या पूछा जाएगा तुमसे उस इम्तिहान में कि बताओ हमने तुम्हें इतनी जिंदगी दी थी वो काहे में गुजारी, हमने तुम्हें इतना माल दिया था किस चीज में खर्च किया, हमने तुम्हें जवानी दी थी वो जवानी किस चीज में लुटाई तुमने, और हमने तुम्हें इल्म दिया था तो उस इल्म से क्या नफा उठाया तुमने। ये पर्चा आउट है। पहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान का ये पर्चा आउट कर रखा है। इन चीजों के बारे में सवाल होगा तो ये जो दुनिया गुजर रही है ये उस इम्तिहान की तैयारी है, ताकि हम जवाब दे सकें भाई उम्र आपने दी थी बेशक आपने हमें तो हमने फला फला काम में गुजारी, जवानी आपने अता फरमाई थी तो जवानी हमने फला फला काम में गुजारी, माल दिया था तो मैंने कहां से कमाया, कहां खर्च किया उसका हिसाब मैं आपको देने को तैयार हूं, दे सकता हूं, और इल्म मुझे दिया था तो उस इल्म पर मैंने कितना अमल किया ये मैं दे सकता हूं। ये इम्तिहान है जो होने वाला है, और ये दुनिया जो है वो उस इम्तिहान की तैयारी की जगह है, मंजिल नहीं है, मकसूद नहीं है, ये उस इम्तिहान की तैयारी की जगह है। अब जरा आप सोचिए दुनिया के इम्तिहान को देख लीजिए। एक तालिब इल्म है जो कोई डिग्री हासिल करने के लिए तालीम पा रहा है किसी इदारे में, इम्तिहान का वक्त आ गया, अब इम्तिहान देने के लिए जा रहा है, उस इम्तिहान का खास वक्त पता है कि फला वक्त में मुझे जाके इम्तिहान देना है, पर्चा आएगा उसका जवाब लिखना होगा, या तकरीरी अगर इम्तिहान है तो कोई मुमतहिन बैठा होगा उसके सवालात का जवाब देना होगा। अब इम्तिहान देने के लिए निकला घर से, रास्ते में तमाशा हो रहा है, बड़ा मजेदार। उसमें इंसान जो है वो मैं हो जाता है, ऐसा तमाशा हो रहा है। एक एक फिल्म चल रही है, उसके अंदर बड़ी शानदार किस्सा लगा हुआ है, उसको देखकर देखने को दिल ललचाया, और वो उसने सोचा यार चलो यहाँ ये यहाँ खड़े हो जाते हैं, ये फिल्म देखते हैं जिसमें मजा आएगा। अब जब फिल्म देखने में लग गया या वो तमाशा देखने में लग गया जो रास्ते में लगा हुआ था, तो क्या हुआ कि वहां जहां इम्तिहान जाकर देना था वहां गैरहाजिरी लग गई। बताओ अकलमंद है वो? वो शख्स अकलमंद है जो इम्तिहान देने जा रहा है और इम्तिहान तक इम्तिहानगाह तक पहुंचने से पहले रास्ते की रानाइयों में रंगीनियों में गुम होकर उसने वक्त जाया कर दिया, वो अकलमंद है? या वो शख्स अकलमंद है कि यार ये हजार रंगीनियां हो, हजार इसमें मजे आ रहे हों, हजार लज्जतें इसमें नजर आ रही हों, मगर मुझे तो पहुंचना है अपने इम्तिहानगाह में जाके इम्तिहान देना है। कौन है अकलमंद? ये दूसरा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल कईसु मन दान नफ्सहु, इस काम के लिए क्या करना होगा इम्तिहान गाह तक पहुंचने के लिए और इन रंगीनियों से अपने आप को अलग करने के लिए क्या करना होगा कि जो उसका दिल मचल रहा है, दिल में जो ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं जाकर इस रंगीनी में को देखूं और इसका नजारा करूं, ये फिल्म देखूं, ये दिल में जो उसकी ख्वाहिश पैदा हो रही है, इस ख्वाहिश को कुचलेगा या नहीं कुचलेगा? ख्वाहिश को कुचलेगा और कुचलकर वहां जाकर इम्तिहान देगा। अगर जरा भी अकल है, जरा भी समझ है, तो वो इस ख्वाहिश को खातिर में नहीं लाएगा और जाएगा, जाकर इम्तिहान देगा। तो पहला कदम क्या होगा? ख्वाहिश को कुचलना। वो जो दिल इस रंगीनी की तरफ माइल हो रहा है, उस मैलान को दबाना, खत्म करना, उसका मुकाबला करना। मुकाबला करके जाएगा तो इम्तिहान में कामयाब होगा। तो पहला कदम आपने ये बताया अकलमंदी का कि अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर काबू पाओ। ये नहीं है कि जैसा दिल चाहा वैसे कर गुजरे। दुनिया के अंदर भी जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो अपने दुनियावी मकासिद में भी ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे कर गुजरे, बल्कि उसको कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, दबाना पड़ता है, तब जाकर कोई मकसद हासिल होता है। एक आदमी मुलाजिम है, उसे 8 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है और सुबह को उठा और
www.dasquran.com
सुस्ती आ गई, मैं नींद आ गई, आज तो दिल चाह रहा है मैं सो जाऊं पढ़कर। अब दिल तो चाह रहा है कि सोए, दिल चाह रहा है कि आराम करे, लेकिन अकल ये पुकार रही है कि अगर तू सो गया तेरी मुलाजमत चली जाएगी। लिहाजा क्या करना पड़ता है? उस तबीयत का वो तकाजा या ख्वाहिश जो दिल में पैदा हुई है उसको मारेगा, कुचलेगा, कहेगा कुछ भी हो जाए, नींद आ रही हो, सुस्ती हो रही हो, काहली हो रही हो, मैं तो जाऊंगा वरना मेरी मुलाजमत खतरे में। तो दुनिया के हर काम को अंजाम देने के लिए इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना पड़ता है। जब तक वो ख्वाहिशात पर काबू ना पाए दुनिया का कोई काम भी नहीं कर सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अकलमंदी का तकाजा यह है कि आदमी पहले कदम पर अपने नफ्स को काबू करे। काबू क्या करे कि ऐसा नहीं है जो मेरे दिल में आएगा करूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि जो मेरे दिल में आ रहा है वो मेरे अल्लाह को पसंद है या ना पसंद। अगर पसंद है तो बेशक करूंगा, नहीं पसंद है और उसके नतीजे में मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा तो फिर मैं वो काम ना करूंगा। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा। और मां बादल मौत के लिए तैयारी करे कि वो असल मंजिल वहां आने वाली है, उसके लिए तैयारी करे कि मैं यहां पर अल्लाह की इताअत करूं और हराम कामों से, नाजायज कामों से बचूं और बचाऊं अपने आप को। एक मशहूर वाकया है, हारून रशीद जो खिलाफत बनू अब्बास के जमाने में मशहूर खलीफा थे, आधी दुनिया पर हुकूमत थी, उनके जमाने में एक मजजूब से आदमी थे, उनको बहलूल कहते थे, बहलूल मजजूब। तो वो चूंकि वो मजजूब से आदमी थे, इस वास्ते हजरत वो हारून रशीद ने उनको इजाजत दे रखी, जब चाहो तुम हमारे पास आ जाया करो, दरबार में कोई तुम्हें रुकावट नहीं, तो आ भी जाते थे। हारून रशीद उनको छेड़ते भी थे, मजजूब आदमी थे तो कभी मजाक कर लिया, कभी कुछ छेड़ लिया। तो एक दिन बहलूल आए तो हारून रशीद ने के हाथ में एक आशा था, लाठी थी, वो बहलूल को दी कि बहलूल ये मैं तुम्हें एक अमानत सपुर्द करता हूं। कि हजरत कैसी अमानत? कि मैं ये अमानत तुम्हें दे रहा हूं, किसी ऐसे शख्स को दे देना जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए। दुनिया में अगर कोई आदमी तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ मिले तो उसको मेरी तरफ से हदिया पेश कर देना। ये मजाक से एक छेड़ की बात की बोलूल को। बोलूल ने कहा ठीक है जादू, देखूंगा अगर कोई मिलेगा तो दे दूंगा, अपने से बेवकूफ ज्यादा मिला तो। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि इसके कुछ अरसे के बाद आ गई हो गई थी, कुछ अरसे के बाद हारून रशीद बीमार पड़ गए और बीमारी भी ऐसी कि जैसे आदमी को जिंदगी से तकरीबन मायूसी होने लगी। तो बहलूल जो हैं वो पहुंचे इयादत के लिए, हारून रशीद की इयादत के लिए, और कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? कि भाई क्या हाल पूछते हो, बस अब सफर दरपेश है। बोलने का काहे का सफर? कहां का सफर? कि आखिरत का सफर। कहे अच्छा, आप आखिरत के सफर पर जा रहे हैं? तो कितने आपने अपने गार्ड और मुहाफिजीन आगे भेजे हुए हैं और कितनी छोलदारियां और खेमे आपके आगे गए हैं, कितने लश्कर आगे भेजे हैं, कितने घोड़े, कितने लश्कर पहले से आपके सफर का इंतजाम करने के लिए गए हैं? तो हारून रशीद ने कहा तुम भी ऐसी बेवकूफी की बातें करते हो, अल्लाह के बंदे सफर जब आखिरत का होता है तो ना उसमें कोई साथ जाता है, ना उसमें कोई छोलदारी जाती है, ना उसमें कोई मुहाफिजीन का दस्ता जाता है, ना कोई उसमें पायलट जाता है, मां तो अकेले ही जाना पड़ता है। कहने अच्छा, वापस कब आएंगे? अरे बंदे खुदा, सफर आखिरत का जब होता है तो वहां से कोई वापसी नहीं होती। तो अच्छा मेरे मोमिनीन, जब हमने देखा था आपको कि जब आप छोटा सा सफर करते थे एक शहर से दूसरे शहर, तो कितने बड़े इंतजाम हुआ करते थे आपके, कितने लश्कर आगे जाते थे, कितने मुहाफिज, कितने पायलट, और कितने खेमे और कितनी छोलदारियां, छोटे से सफर के लिए आप ये करते थे। अब इतने बड़े सफर में जा रहे हैं जहां से वापसी भी नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं किया आपने ये सारा इंतजाम? लिहाजा आपने मुझे एक अमानत दी थी और ये कहा था कि अपने से ज्यादा बेवकूफ अगर कोई मिले तो उसको ये देना, तो ये छड़ी आपकी अमानत है, मुझे आपसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई और नहीं मिला, मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई और नहीं मिला सिवाय आपके। कि छोटे से सफर के लिए तो इतने इंतजाम किया करते थे और इतना बड़ा सफर दरपेश है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो हारून रशीद रो पड़े और कहा कि तुम, हम तुम्हें दीवाना समझा किए, लेकिन मालूम हुआ कि तुम सही माना में अकलमंद तुम हो। और इसी को फरमाया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कईसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। अकलमंद वो है कि जो अपने नफ्स पर काबू पाए और मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करे इस दुनिया में। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि इंसान की ताकत से बाहर हो। अल्लाह ताला ने वो तैयारी आसान कर रखी है और उस तैयारी का नमूना हुज़ूर नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा की रोशनी में हमें अता फरमा दिया। देखो यह है नमूना तैयारी का कि ये दुनिया के सारे काम भी हो रहे हैं, दुनिया का कोई काम नहीं रुक रहा, तुम्हें भूखों नहीं मारा जा रहा, तुम्हारे खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारे सोने पर पाबंदी नहीं है, तुम्हारे अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करने पर पाबंदी नहीं है, सिर्फ चंद हिदायात है जो तुम्हें दी गई है। वो क्या है कि पांच वक्त की नमाजें तुम्हारे जिम्मे फर्ज है, रमजान का रोजा तुम्हारे जिम्मे फर्ज है, साल में एक मरतबा ज़कात अदा करना फर्ज है, बल्कि पूरी उम्र में अगर इस्तेआत हो हज करना फर्ज है। इतना आसान कर दिया जाने और गुनाहों से बचना, गुनाह भी उन्हीं चीजों को करार दिया गया है जो इंसान के लिए मुजर है। अगर शराब हराम की गई है, शराब हराम तो है ही अपनी जगह, लेकिन इंसान के लिए मोहलिक है इसलिए हराम की गई। जिना इंसान के लिए मोहलिक है इसलिए हराम किया गया। सुअर खाना इंसान को की तबीयत को उसके मिजाज को बिगाड़ देने वाली चीज है इसलिए उसको हराम किया गया। और झूठ बोलना, गीबत करना, दूसरे पर इल्जाम लगाना, बिला तहकीक बातें रवाना कर देना, ये सब चीजें इंसान के लिए मुजिर हैं, उसके मुआशरे को में फसाद फैलाने वाली हैं, इसलिए उनको मना किया। अभी रमजान से पहले मैंने सूरह हुजरात की आयात की तफसीर आपके सामने बयान की थी। एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, एक दूसरे को ताने ना दो, एक दूसरे को बुरे नामों से याद ना करो। और वो सारे असबाब जो माशरे में फसाद फैलाते हैं उनको मना किया। वो कोई मुफीद बातें नहीं है जिनसे मना कर रखा हो, सब हराम, जब सब मुजर चीज है। लिहाजा तैयारी, आखिरत की तैयारी वो क्या है? इत्तबाए सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना अपने सामने रखो, आपने किस तरह जिंदगी गुजारी, आपने तिजारत भी की, आपने काश्तकारी भी की, आपने मुलाजमत भी की, आपने हुक्मरानी भी की, आपने जंगें भी लड़ी, आपने निकाह भी किए, आपने खाने की जिंदगी भी गुजारी, सारी जिंदगी के तमाम अहवाल जो एक इंसान को पेश आ सकते हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हयात तय्यबा में उनका नमूना मौजूद है। उस नमूने को देखते जाओ, अमल करते जाओ, बस यह है तैयारी। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो फरमाया अकलमंद वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए और माबादल मौत मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करे। तैयारी ये है इत्तिबाए सुन्नत। और दूसरे अक्स में फरमाया कि आजिज वो है जिसने अपने आप को अपने ख्वाहिशात के पीछे लगाया हुआ है, जो उसके दिल में आता है करता जाता है, इसमें मजा आ रहा है चलो ये कर लो, इसमें मजा आ रहा है ये कर लो, इसमें मजा आ रहा है ये कर लो। और जब कहा जाए कि भाई ये चीज नाजायज है, हराम है, अल्लाह ताला को नाराज करने वाली है, तो ये जुमला बोल देते हैं अरे भाई अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। इसको फरमा रहे हैं सरकारे दो आलम के अमल तो ख्वाहिशात पर हो रहा है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, और आरजुएं बांधी हुई हैं अल्लाह के ऊपर कि मैं आखिरत में जब पहुंचूंगा तो अल्लाह में मेरे इन गुनाहों को माफ कर देंगे, खुद ही माफ कर देंगे। आरजू में वो बांधे, आरजू वो शख्स बांधे जो कुछ कर भी रहा हो, और कर तो कुछ नहीं रहा, अपने आप को ख्वाहिशात के पीछे लगाया हुआ है, जो जी में आता है करता है, जो जी में आता है बोलता है, न जबान पर काबू, न निगाह पर काबू, न दिल पर काबू, न हाथ पर काबू, ये सारे आजाए इंसानी वो अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल हो रहे हैं, और आरजू ये बांधी हुई है कि अल्लाह ताला का पूर्व रहीम है। उसको मजम्मत की आपने, फरमाया वो आजिज है, बेवकूफ है, वो अकलमंद के बरखिलाफ वो शख्स बेवकूफ भी है और बेकस भी है, आजिज भी है। लिहाजा सबक ये दिया कि अगर जरा भी तुम्हारे अंदर अकल है तो इस जिंदगी को आखिरत के बाद की जिंदगी के लिए खेती बनाकर इस्तेमाल करो। अद्दुनिया मजरातुल आखिरा, ये दुनिया खेती है, यहां जो बोओगे आखिरत में वो काटोगे। लिहाजा हर इंसान को ये फिक्र चाहिए कि मेरे मरने के बाद में एक मुराकबा है, छोटा सा मुराकबा, यानी मुराकबे से मुराद यह है कि जरा सा ध्यान। आदमी 24 घंटे में किसी वक्त सोचे कि अगर मेरी इस वक्त मौत आ जाए, और आना कोई बईद नहीं है, अगर मेरी इस वक्त मौत आ जाए तो क्या मैं इस काबिल हूं कि अल्लाह ताला के सामने जाकर जवाब दे सकूं कि मैंने साबिक जिंदगी किस तरह गुजारी थी। तो ये छोटा सा मुराकबा कर लिया करें तो इंसान के दिल में खुद ब खुद अपनी इस्लाह का जज्बा पैदा होगा, और जज्बा जब पैदा होगा तो फिर उसको ये फिक्र होगी कि मेरे अंदर जो खराबियां मैं उसको दूर करूं, अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजामंदी के मुताबिक बनाऊं। और उसके लिए फिर जब फिक्र पैदा हो जाएगी तो फिर खुद रास्ते ढूंढेगा। अगर फिक्र ही नहीं है तो रास्ता कैसे मिलेगा? जब फिक्र पैदा होगी तो फिर वो ऐसे फिक्र वालों के पास जाएगा, उनसे मालूमात हासिल करेगा, किताबें पढ़ी छपी हुई हैं उनको पढ़ेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा के लिए मालूमात हासिल करेगा और उसको इत्तबा करेगा, तो इंशाल्लाह फिर इस्लाह हो जाएगी। اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے www.dasqur'an.com